سورت فصلت آیت نمبر 40. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو ملحد ہیں، جو اشرار ہیں، جو کفار ہیں، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے. تو یلحدونا کون ہیں؟ اس کا روٹ ہے لام ہا دال. لام ہا دال اس کی اصل ہے، اور لحد جو ہے یہ قبر کو بھی کہتے ہیں، اور وہ قبر جو کہ ایک سائیڈ پر ہوتی ہے، بغلی قبر. اور اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو مردہ ہوتا ہے وہ سیدھا ڈالنے کی بجائے وہ جو سائیڈ پر کر کے اندر سے اس کو کھودا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس کو پھر ڈالا جاتا ہے، کیونکہ وہ علاقے جہاں پہ پانی اوپر ہوتا ہے یا پانی جلدی آ جاتا ہے تو میت جلدی خراب ہو جاتی ہے. تو اس کو سیدھا گڑا بنانے کی بجائے کیا کیا جاتا ہے کہ بغلی یعنی سائیڈ پہ اندر کر کے اس کو کھود کر پھر اس میں جو ہے وہ مردہ اتارا جاتا ہے. بہرحال تو لحد قبر کو بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے یہ جو لفظ ہے لحد کا، تو الحد السہم، تیر کا نشانہ کسی ایک پہلو میں لگنا. عام طور پہ تیر مارتے ہیں تو کس لیے؟ کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس پر تیر لگ جائے. جب تیر ایک سائیڈ پہ لگتا ہے تو کہتے ہیں الحد. الحد تو کیا ہے؟ الحد السہم، کہ تیر سائیڈ پہ لگ گیا. اسی طرح الحد عن الدین، کہ وہ دین میں جو ہے وہ تانے کرنے لگا، دین میں سے وہ پھر رہا ہے، ٹیڑھا ہو رہا ہے. تو الحاد کے معنی ہے سیدھے راستے سے ٹیڑھے راہ کی طرف مڑ جانا، کج روی اختیار کرنا. تو اللہ کی آیات میں الحاد کا پھر مطلب کیا ہوا؟ کہ آدمی سیدھی بات میں سے ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرے. آیات الہی کا ایک تو ہوتا ہے نا صحیح اور صاف مطلب، جو کہ قرآن سے سمجھ میں آتا ہے، یا یہ کہ رسول اللہ نے جو کیا، صحابہ نے کیا، تو اس کو لینے کی بجائے وہ غلط مطلب نکالنے لگے، تو اس کو جو ہے وہ الحاد کہتے ہیں. الحاد کے معنی جو ہوتے ہیں انحراف کے بھی ہوتے ہیں. مثلا کوئی دین میں آئے اور پھر دین سے نکل جائے. تو اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا بات بتا رہے ہیں؟ کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جو ہیں وہ الحاد کرتے ہیں، اس کو غلط معنی پہناتے ہیں، تو وہ لوگ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، تو وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی یہ دھاندلی، ضد، کوتاہی جو ہے وہ ان کو اللہ کی پکڑ سے جو ہے وہ بچا لے. تو بعض لوگ کچھ بحثیاں کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ بشر ہیں، لوگ کہیں کہ نہیں وہ نور ہیں، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، کوئی کہے کہ نہیں ابھی نبی اور باقی آنے ہیں. جیسے بعض لوگ، یہ جو قادیانیوں کا طبقہ ہے وہ یہی کہتا ہے نا کہ نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا. تو یہ ملحد، غلط راستہ انہوں نے اختیار کر لیا. یا پھر یہ کہ جو ہے وہ حدیث جو ہے وہی مطلوع اور غیر مطلوع، ہم دونوں پر ایمان لاتے ہیں نا، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ہے نا، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے نا. اور اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول کی اطاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ہم ڈائریکٹ ہی قرآن کو سمجھ لیتے ہیں، رسول سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، احادیث جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور بعض لوگ جیسے اب کہتے ہیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح پیسے بہت سے ضائع ہوتے ہیں، نہا کتنا خون بہتا ہے، تو وہی پیسے کیوں نہ اللہ کے راستے میں دے دیے جائیں، یہ بھی الحاد ہے. تو بہت سے اس کی جو ہے وہ مثالیں ہو سکتی ہیں جو فی زمانہ آج کل پائی جاتی ہیں. یا بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پردہ ہے ہی نہیں، ستر حجاب تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہوتا ہی دل کا ہے. یہ بھی ٹیڑھے معنی ہیں جو قرآن کی آیات کو پہنائے جاتے ہیں. یا بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ساس سسر کا بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے خدمت کی جائے. اب آپ نے سورت نساء میں یہ بات پڑھی تھی کہ جو مومن عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، وہ ہے نا، مومن عورتیں جو ہوتی ہیں وہ شوہروں کی بھی اطاعت گزار ہوتی ہیں نا، تو ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. اب کون سا شوہر ہے جو چاہے گا کہ اس کے ماں باپ کو تو کھانا نہ دیا جائے اور اس کو کھانا دیا جائے؟ اس کی تو عزت کی جائے لیکن اس کے ماں باپ کی عزت نہ کی جائے. और वो चाहता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें, और बहू कहे कि मैं रहूंगी नहीं जब तुम्हारे माँ बाप साथ रहेंगे, इसलिए भी तलाक हो रही है कि सास ससुर की खिदमत मेरे लिए तो लिखा ही नहीं हुआ कहीं, और मुझे तो अलग घर में रहना है। भाई अगर अल्लाह ने हालात दिए हैं, अच्छे हालात हैं, तो जरूर अलग कर दें वालदैन। और मैं कहती हूँ वालदैन का इतना दिल बड़ा होना चाहिए कि अच्छे हालात हैं तो ये ना सोचें कि एक बेटा है या दो बेटे हैं, आप बेशक साथ उनको अलग घर ले दें, वो अपना अलग घर ले लें, करीब हो, एक दूसरे की खैर खबर भी ली जाए, वो आपकी खिदमत करें, आप उनकी खिदमत करें, एक दूसरे से फवायद उठाएं, लेकिन उनको प्राइवेसी का हक और मियां बीवी का जो, और यहाँ की आजकल जो जदीद जनरेशन जो है, हमारी जो यूथ है जो हर वक्त अब यही बात करती है, तो मतलब उनको भी जीने दिया जाए, लेकिन जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको तनहा और बगैर ऐसे ही किसी भी जो उनकी पूछ करने वाला हो, यानी उनकी खैर खबर लेने वाला हो, ऐसे ना हो कि उनको छोड़ दिया जाए या ओल्ड हाउसेस के सपोर्ट कर दिया जाए, तो ये बात सही नहीं है। तो ये क्या है कि बस अब जो है वो इस्लाम का तो मिजाज क्या है कि सारों के हकूक देते हुए हमें फिर चलना है ना, तो सबसे बड़ा हक अल्लाह का हक है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अल्लाह की आयात में जो है वो टेढ़ इख्तियार करते हैं, सीधे रास्ते के बजाय उल्टे रास्ते पे चलना चाहते हैं। अच्छा, दूसरे जो है इसके मानी आप क्या लेंगे? एक तो ये कि आप आयात के मानी कुरान की आयात के ले लें, और दूसरे इसके मानी ये है कि आप आगे पीछे की अगर आयात को देखें तो पहली आयतों को देखें तो कायनात की निशानियों का जिक्र हो रहा है ना, तो कायनात की निशानियां जो हैं अगर आप यहाँ पे वो मुराद लें तो फिर इसके मानी क्या है कि अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जिसने, जैसे रात के बाद दिन और चांद के बाद सूरज, सूरज के बाद चांद, तो इससे जो है क्या मानी है कि आखिरत तो होगी, कयामत तो आएगी, फिर भी लोग कहते हैं कि आखिरत कोई नहीं होनी, कयामत कोई नहीं आनी, तो लोग जो हैं वो क्या करते हैं अल्लाह की आयात का जो है वो इनकार करते हैं, और वो मानते ही नहीं हैं कि कायनात जो है इसके ये धर्म भरम हो जाएगी और फिर इसके बाद जो है वो हिसाब जो है वो होगा। तो आप देख लीजिए, आप सूरत फुसलत की आयत 25 में पढ़ चुकी कि बुरे साथी जो करीन थे, तो गुमराह लीडर, क्या पता चला कि नाकाम ना मुराद वापिस भी नहीं आ सकते, और अपने जुलूद को बुरा भला कह रहे हैं, अपनी समाज को, अपने अपने जो जिस्म के अज़ा हैं उनको बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन उनकी सही उनके किसी काम नहीं आई। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो अशरार हैं, ये जो फासिद और काफिर हैं, ये इनकी हरकतें हमसे छुपी हुई नहीं है, और फिर हम क्या करने वाले हैं, आगे एक सवाल रखा है, अफमन युल्का फिन्नारी, बस वो शख्स जो डाला जाए नार में, भला वो शख्स जो आग में डाल दिया जाए खैरुन ज्यादा बेहतर है, अम या वो मैं याती जो आए आमिनन अमन से। तो आप देख लें कि आया वो शख्स बेहतर है जो आग में झोंका जाने वाला है, या वो जो अमन से आएगा, बड़े इत्मीनान के साथ आएगा, और वो दिन कौन सा होगा, वो दिन होगा यौमल कियामती, कयामत का दिन होगा, और आमिनन ये उसका हाल होगा। तो कयामत की जो है वो नफ्सा नफ्सी में हौलनाकी और दहशत नाकी में, और अबूसन कम तरीरा का जो दिन है, उस दिन में भी वो शख्स जो है वो अमन के साथ आएगा, क्योंकि उसके दिल में अमन था, वो तौहीद परस्त था, ईमान लाने वाला था, वो मुलहिद नहीं था, वो अल्लाह की आयात का इनकार करने वाला नहीं था। फिर कहा ए मलूमा शे, तुम अमल करो जो तुम चाहो। अब ये क्यों कहा कि ए मलूमा शे तुम, ये गुस्सा है अल्लाह ताला का, नाराजगी का इजहार है। दूसरी तरफ दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार और आजादी दी है, चाहे तो नेकी करे चाहे तो बदी, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दुनिया में तुम आजाद हो, तुम खुद मुख्तार हो, ए मलूमा शे तुम जो चाहे तुम करो, इन्नहु बिमा तामलूना बसीर, बेशक अल्लाह जो है वो क्या करता है, बिमा तामलूना जो कुछ तुम अमल कर रहे हो, जो तुम्हारी हरकतें हैं, बसीर वो उनको देख रहा है। तुम कुफ्र कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, तुम जो है वो जहद कर रहे हो, तुम जो है वो करीन बुरे सोबत तुमने इख्तियार की हुई है, तो तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तो ये अल्लाह का बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है और ये डरावा है कि अल्लाह तो बसीर है, तो अल्लाह ताला जो है वो देख रहा है। फिर साथ ही क्या कहा, इन्नल्लज़ीन कफरू बिज़िक्री लम्मा जाअहुम, बेशक वो लोग, कौन से लोग, जिन्होंने कफरू कुफर किया, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया बिज़िक्री जिक्र के साथ, और खास तौर पे कब जिक्र के साथ उन्होंने कुफर किया, इनकार किया और उसको जो है वो छुपा दिया, लम्मा जाअहुम, जब वो उनके पास आ गया। तो यहां पर जिक्र से मुराद जो है वो कुरान है। वैसे तो जिक्र कुरान में नमाज के मानी में भी इस्तेमाल हुआ है, आकिम सलाता लिज़िक्री, और जिक्र से मुराद याद दहानी, ये रसूल के लिए भी आया है कि रसूल आए और उन्होंने याद दहानी कराई, है ना, और किताबों के लिए भी आया है, और यहाँ पे कुरान के लिए जो है ये जिक्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि इसकी आप दलील लाएं, सूरत जो है यूनस को आप देख लें, और ये आयत है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, तो इस आयत में भी क्या बात बताई गई कि बेशक हमने ही इसको नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो ये अल्लाह ताला ने जो है वो किसके बारे में ये बात कही, कुरान के बारे में कही कि कुरान के नाजिल करने वाले भी हम ही हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। तो कुरान मजीद जो है ये जिक्र है, ये याद दहानी है, ये बुझे दिलों को जो है वो एक जिंदगी देता है, ये सोए हुए दिलों और दिमागों को जगाता है, ये वो जमीर जो मुर्दा हो चुके हैं उनको जो है ये बेदार कर देता है, जगा देता है। तो बेशक वो लोग जिन्होंने जब जिक्र उनके पास आ गया तो कुफर किया, लम्मा जा अहम को सर्कल कर ले, जब वो उनके पास आ गया, इससे क्या बात पता चलती है कि ये इनके जुर्म की संगीनी है। किसी ने कोई चीज देखी ना हो तो वो क्या जाने कि उसकी अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, वो हंसी कितनी है और उसमें कबाहत कितनी पाई जाती है, अगर वो ना कदरी करे तो माजूर है। लेकिन अहले मक्का ने कुरान को देख लिया, उसके असरात इर्द गिर्द नजर आ रहे थे, इसकी दलायल की कुव्वत को वो आजमा रहे थे, छुप छुप कर सुन भी रहे थे, लेकिन कुरान का इनकार कर रहे थे। ये इनकार तो ऐसे ही है जैसे कि कोई सूरज का इनकार करे जबकि वो सर पर चमक रहा हो, और कोई अपनी आंखें बंद करके कहे कि नहीं सूरज कोई नहीं है। तो ये बात है कि जबकि जिक्र इनके पास आ गया, तो आज कुरान मेरे और आपके पास है, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि जितनी भी नेमतें हैं हम उनका इस्तेमाल उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन कुरान की नेमत, इस्लाम की, ईमान की नेमत वो नेमत है जो मरने के बाद भी, सांस की डोरी टूटने के बाद भी, मौत के वक्त उस वक्त भी साबित कदम रखती है, कब्र के अंधेरों में ये जो है गमखार बन जाती है, साथी बन जाती है, हशर के मैदान की रुसवाइयों में जब नामाए माल तोले जाएंगे, जब पुल से राह से गुजरा जाएगा और जब नामाए माल हाथों में मिलेंगे, हर मौके पर, हत्ता के जन्नत में चढ़ते वक्त भी, जिसको जन्नत मिल भी जाएगी तो कहा जाएगा कि ये है तेरा मकाम, और कुरान की तिलावत करता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, तेरा आखिरी मकाम जो है तेरी कुरान की आखिरी तिलावत है, यानी आखिरी आयत है जिसकी तू तिलावत करेगा। तो जिस सीने में कुरान ना हो उसकी मिसाल तो उजड़े हुए बेअबान जैसे घर किसी है। तो यहां पे क्या है कि कुरान आने के बाद इन्होंने इनकार कर दिया। अब मुसलमानों के पास कुरान मौजूद है, खूबसूरत गिलाफों के अंदर है, और कुरान की किताबें तफासीर बहुत सी हैं, सीडी कैसेट भी आम हैं, लेकिन अफसोस कि अब कुरान मजीद जो है वो हमारे अमल में नहीं है। अब पढ़ाई काफी आम हो रही है कुरान की, लेकिन पढ़ा तो जाता है लेकिन क्या इस पर अमल भी किया जाता है? ऐसा तो नहीं कि जब तावीज की बात आती है तो कुरान आता है, या जब कोई मर जाता है तो कुरान पढ़ा जाता है, जब कोई पैदा होता है तो कुरान, जब नया घर ले लेते हैं तो कुरान, और नया घर लिया सूद पर है, लेकिन दर्स एक जरूर रखवाएंगे, महफिल कर रहे हैं अपने घर में, कोई पार्टी है शादी की, कुरान की तिलावत जरूर रखेंगे, शादी की सारी जो पार्टियां होने वाली है ना उसकी इब्तदा कुरान के दर से करेंगे, फिर उसके बाद जैसे अल्लाह से इजाजत ले लेते हैं कि अब जो चाहे हम करते चले जाएं, भूल जाते हैं कि जिस कुरान को पढ़ा है वो कहता क्या है। तो असल बात क्या है कि पढ़ा तो जा रहा है, क्या अमल में भी आ रहा है? तो ऐसा तो नहीं जबान की नोक पर तो है, दिल की गहराइयों में नहीं आ रहा। तो ये हमें सबको सोचना है कि हमारे पास मौजूद है, आ चुका है, तो हमारा इनके साथ, कुरान के साथ सलूक कैसा है। وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, मगर ये हकीकत है कि ये एक जबरदस्त किताब है। अब आप देखें कि किताब कुरान के लिए अजीज लफ्ज आया, और अजीज जो है इसके तीन मानी आप पढ़ चुकी हैं, और एक जो है इज्जत के, है ना, इज्जत के मानी है, और दूसरा है गलबे के, गलबा और कुव्वत के मानी में इस्तेमाल होता है, और तीसरा है इम्तना। इम्तना का मतलब होता है रोकना, मना करना। इम्तना बड़ा सा है ना, तो इसका रूट निकाल लें फौरन, मीम नून ऐन, मना करना। तो अब आप देखें कि यहां पर अजीज का कोई तो तर्जुमा, अगर आप मुख्तलिफ कुरान खोलेंगी तो कोई तो ये कहेगा कि कुरान मजीद जो है ये आली मर्तबा किताब है। अजीजुन तर्जुमा क्या किया, बड़ा मुअज्जज, इज्जत वाला ना। अच्छा, किसी कुरान को आप खोलेंगी तो आप देखेंगी उन्होंने तर्जुमा किया बड़ी जबरदस्त किताब है, उन्होंने गलबा कुव्वत के मानी में लिया है, और कहीं आपको इम्तना के मानी भी नजर आएंगे, मतलब वैसे इसके इम्तना के मानी भी है ना अजीज के। तो इम्तना जो है इसके फिर मानी क्या है, क्योंकि अजीज के दूसरे मानी मनी उनके हैं। इम्तना या मनी उन उस चीज को कहते हैं जो पहुंच से ऊंची हो, दस्तरस से बालातर हो। अब कुरान मजीद जो है वो क्या है, अजीज उन से मुराद क्या है, मनी उन है। अगर आप इसको गलबा और कुव्वत के मानी में लें तो क्या है कि कुरान मजीद जो है, जो लोग कुरान का इनकार कर रहे हैं तो इसका भेजने वाला भी तो अजीज है ना, तो भेजने वाला जबरदस्त, तो कुरान भी गालिब, और ये अजीज किताब है, और ये एक ऐसी किताब है कि जिस पर लोगों को अमल करना चाहिए, और जो इसका इनकार करेंगे तो कयामत के दिन ये किताब उनके लिए हुज्जत बन जाएगी, और किताब इनके लिए फैसला करेगी, है ना। कुरान गवाही देगा ना, रसूल गवाही देगा, तो कुरान भी बोलेगा ना, आयतें बोलेंगी कि पढ़ते थे अमल नहीं करते थे, मुझे कभी पढ़ा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। और अगर इसको मनी उनके मानी में लें, और मनी उनके मानी में लें तो अगली आयतें बताती हैं कि मनी उनके मानी फिर क्या है, कि ला याती बातिलु मिन बैन यदैही वला मिन खल्फही, बातिल नहीं आ सकता इस पर, मिन बैन यदैही, ना इनके सामने से। यद हाथ को कहते हैं, और यदैन दो हाथ होते हैं, नून गिर चुका है, तो हाथ कहां पे होते हैं, सामने होते हैं ना, तो आगे के लिए फिर ये इस्तेमाल होता है, और बेना भी दरमियान के लिए होता है, दो हाथों के दरमियान क्या हुआ, आगे। तो जो कुछ सामने है, आगे है, तो कुरान मजीद के बारे में क्या कहा जा रहा है कि नहीं आ सकता इसमें, ही की जमीर कुरान के लिए, ला याती ही, नहीं आ सकता कुरान पर, अलबातिलु बातिल यानी झूठ, मिन बैन यदैही इसके दोनों हाथों के, मुराद यानी कुरान मजीद जो है बातिल इस पर सामने से भी नहीं आ सकता, वला मिन खल्फही, और ना इसके पीछे से इस पर आ सकता है। इसके मानी ये हैं कि कुरान मजीद की जो तालीमात हैं वो ऐसी तालीमात हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान को आगे पीछे दोनों तरफ से बिल्कुल महफूज रखा है। उतारने वाला कुरान को कौन है, अल्लाह ताला, लाने वाले कौन है, जिब्राइल अमीन, और इसको किसको ये कुरान दिया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इसको कबूल किसने किया, अखियार ने, सालहीन ने, जो सबसे बेहतरीन थे, सहाबा और सहाबियात ने। तो इब्तदा से लेकर इंतहा तक ई खाना हुमा आफ्ताब, बस कहीं से भी शैतान इसमें दर अंदाजी नहीं कर सकता। तो क्या है कि आगे से या पीछे से शैतान जो है वो कुरान के ऊपर जो है वो आ नहीं सकता, कुरान की आयात जो है वो इनको बदल नहीं सकता। वैसे तो शैतान चाहते थे ना ऊपर जाते थे, तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि आसमानों को जो है वो सितारे तो डाले आसमानों में, किस लिए, वज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा वहिफ़ज़ा, तो अल्लाह ताला ने उनको जो है वो महफूज कर लिया। तो एक तो इसके मानी ये हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर किसी की भी दरअंदाजी या दखलअंदाजी नहीं होने दी, बड़ा इसका हिफाजत का इंतजाम था, शयातीन मार भगाए जाते थे। दूसरे इसके मानी क्या है कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का खुद इंतजाम किया है, और मैंने आपको दलील भी बताई थी कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, है ना। तो असल बात क्या है, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, तो अल्लाह ताला ने कुरान को खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, इसलिए कोई इसमें कमी बेशी नहीं कर सकता। मसलन पहले जो तौरात और इंजील थी उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनके हामिलीन पर डाली गई थी, लेकिन कुरान मजीद जो है इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो अल्लाह ताला ने खुद ले ली। और कुरान की हिफाजत कैसे की जाती है कि जब कुरान नाजिल होता था तो इसकी वही जो थी इसमें शयातीन मदाखलत नहीं कर सकते थे। मिन बैना यदैही का यही मानी है कि बड़ा एहतमाम था, ऐसा नहीं हो सकता था कि वही इलाही में शयातीन आगे बढ़े और कुरान में आगे बढ़कर जो है कुछ घुसाने के लिए मौका तलाश कर लें। कुरान अल्लाह ताला ने तंजील बड़े एहतमाम के साथ नाजिल किया। फिर दूसरे इसके मानी क्या है कि जिस फरिश्ते के जरिए भेजा उस फरिश्ते की सिफत क्या है, जी कुवतिन मुता कवियुन अमीन, और फिर उसकी सिफत क्या है, इंदजिल अर्श मकीन। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए इसको भेजा, तो जो तमाम फरिश्तों का सरदार है, कोई चीज भूल नहीं सकता, जेर जबर में फर्क नहीं हो सकती, और फरिश्ता अल्लाह के बहुत करीबी है। तो ये भी क्या है, ये एहतमाम इसलिए किया गया कि कुरान के मंबे में बातिल घुस ना सके। तीसरे मानी क्या है, अल्लाह ताला ने बंदों में से जिस बंदे को मुंतखब किया कुरान देने के लिए, वो बंदा खुद भी खैरुल खलाइक। दूसरा क्या कि कुरान को याद रखने और इसकी हिफाजत की तरतीब की जो जिम्मेदारी थी वो अल्लाह ने इस हजरत रसूल अल्लाह ही पर नहीं डाली थी बल्कि अपने ऊपर ले ली। मसलन अभी मैं एक शेर पढ़ रही थी और फिर मैं देख रही थी कि आप एक दूसरे को देख रहे हैं, क्यों देख रहे थे कि शायद किसी का कुछ हिस्सा रह गया था, लेकिन मैं इतने शेर तो ज़रा पूरे नहीं करा सकती, और माशाल्लाह आप देख भी सकते हैं किताबों से। तो बहरहाल शेर ही नजर हो जाए कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन अब आप देखेंगे जब वही नाजिल होती थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करते थे कि भूल ना जाए। सूरह क़यामा, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताअजल बिह इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना थुम्मा इन्ना अलैना बयाना। आयत 16 से 19 तक आप देखें तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया और तुम इस कुरान को हासिल करने के लिए अपनी जबान को तेज ना चलाओ, हमारे ऊपर है इसके जमा करना भी और इसके सुनाने की जिम्मेदारी भी, जब हम इसको सुना चुके हैं तो इस सुनाने की पैरवी करो, हमारे जिम्मे है ये सारा कुछ। तो अब आप देख लें कि कुरान का नाजिल होना और उसको सही उसका रहना और रसूल अल्लाह को सही याद हो और फिर आपके सहाबा ने उसको याद किया, फिर आप हर रमजान में जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौरा किया करते थे, तो ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने जो है ये इंतजाम किया हुआ था आपका कि बेहतरीन बंदे का इंतखाब किया, और फिर आखिरी रमजान में तो दो दफा आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ दौरा किया, फिर खुल्फाए राशिदीन के जमाने में इस पर मजीद काम हुआ, इसकी नकलें दूसरे शहरों में भेजी गई, और आप देख लें कि ये जो मगरिब की दुनिया है कई दफा इन्होंने जो है ना कुरान के नुस्खों को लेकर इसकी तहकीक की है कि क्या ये अभी भी सही है, और कहते जर्मनी का एक इदारा 3 नस्लों ने उस पर काम किया, कुरान मुख्तलिफ उन्होंने जमा किए मुख्तलिफ अदवार के, बहुत पुराने भी और आज के दौर के भी, और कुरान पर कोई कमी बेशी उनको नहीं मिली। और एक होता है ना किताबत की कोई गलती हो जाए तो ये दूसरी बात है, वैसे उनको कोई कमी बेशी जो है वो नजर नहीं आई। तो ये है बात कि अल्लाह ताला ने कुरान की जो है वो हिफाजत की है और मना किया है कि कोई इसमें दखल नहीं दे सकता, ना इंसानों में से ना जिन्नों में से। फिर आप ये भी देख लें कि कुरान की जबान अरबी जबान है, तो ये भी बड़ी अहम बात है। पांचवी बात कि अरबी जबान का इंतखाब किया और कुरान की हिफाजत का जब क्यामत तक के लिए वादा कर लिया तो अरबी जबान भी जो है वो क्या है कि एक जिंदा और जावेद जबान है, आज कुफर भी सीख रहा है। तो वजह क्या है कि पहली आसमानी सहीफे जो थे जब उनकी असल जबानें मिट गईं तो किताबें भी मिट गईं। जबान जिंदा रहती है तो कौम जिंदा रहती है, कौम जिंदा रहती है तो जबान जिंदा रहती है, और सहीफा जिस जबान में है तो अल्लाह ताला ने क्या किया है कि अरबी بڑی فصیح اور بلیغ زبان کو جو ہے وہ قرآن کے لیے منتخب کیا. اور ایسی قرآن کی عربی ہے کہ اہل عرب چیلنج کے باوجود جو ہے وہ قرآن جو ہے اس کی نظیر پیش نہ کر سکے. تو وہ من خلف ہی کی تفسیر میں کیا آتا ہے کہ اس دور میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور آج کے دور میں بھی اور رہتی دنیا تک اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اور بھی اس کے بہت سے پہلو ہیں. علوم قرآن میں آپ اس کو پھر پڑھ سکتی ہیں, دیکھ سکتی ہیں. تنزیل نازل ہے یہ, اور پھر تنزیل کے اندر اہتمام پایا جاتا ہے, درجہ بدرجہ پایا جانا کسی چیز کا, شان و شوکت سے اس کو نازل کرنا. اور نازل کس کی طرف سے کیا گیا؟ من حکیم, من حمید. حکیم کے اندر بھی دو معنی پائے جاتے ہیں اس کی, جیسے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ حکم ہیں, مضبوط ہیں, پختہ, اور دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں حکمت والے. تو قرآن مجید بھی, قرآن کے لیے بھی حکیم کی صفت ملتی ہے ہمیں نا. تو یہاں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے کہ یہ جو ہے جس نے قرآن کو نازل کیا تو وہ خود حکیم ہے, خود مضبوط ہے, اور اس کے فیصلے بھی مضبوط. حمید, اور حمید جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ وہ تمام تعریفوں کا اور تعریف والے کاموں کا منبع اور سرچشمہ ہے نا. تو کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ سزاوار حمد ہے. تو حکیم اور حمید کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہے ہیں کہ لوگوں تم قرآن کی طرف رجوع کرو. ما یقالو لکا, پھر فرمایا کہ نہیں کہا جاتا لکا تیرے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جو کچھ کہا جاتا ہے, الا مگر ما قد قیل للرسول من قبلک, جو کچھ کہا جا چکا رسولوں کو تجھ سے پہلے, کہ آپ کو بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو بھی وہی بات کہی گئی جو آپ سے کہی جا رہی ہے. تو آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو کیا بات کہی گئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی؟ کہ لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا اور جو وہ کتاب لائے تھے اس کا انکار کیا. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم جو آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے, اور دوسری امتوں کے اشرار نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ جو ہے وہ یہی رویہ اختیار کیا ہے, اسی طرح انہوں نے اپنے رسولوں کو تنگ کیا ہے. تو آپ پریشان نہ ہوں, اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ عَلِيمٍ, بے شک تیرا رب جو ہے وہ کیسا ہے؟ لَذُو مَغْفِرَةٍ, مغفرت والا ہے. تو اطمینان رکھ کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کافروں کو ڈھیل دے رہا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ جزا اور سزا کا قانون نافذ نہیں کرے گا. اگر وہ نیکی اختیار کرنے والوں کو, ایمان لانے والوں کو ان کے گناہوں سے درگزر کرے گا, ان کو معاف کرے گا, تو اللہ ایٹ دی سیم ٹائم کیا ہے؟ وذو عقاب علیم, عذاب دینے والا ہے, دردناک. اور آپ کو پتا ہے کہ عقب جو ہے وہ ایڑی کو کہتے ہیں, ایڑی پیچھے ہوتی ہے پاؤں کے, تو جو سزا ہے وہ عمل کے بعد ملتی ہے, جزا ہو یا سزا ہو. تو نیکی کرنے والوں کو جزا کیا ملے گی؟ لذو مغفرت, کہ ان کے لیے تو رب ہے مغفرت والا, ان کی گناہوں سے درگزر کرے گا, ان کے گناہوں پر پردہ پوشی کرے گا, اور ان کا جنت میں استقبال ہوگا, نیک لوگ ہوں گے. جو ہیں برے تو ان کو اللہ پکڑے گا. تو دنیا میں اگر ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ آج نہیں پوچھا تو کبھی بھی نہیں پوچھے گا, پوچھے گا, اور ایسے پوچھے گا کہ علیم, بڑی دردناک سزا دے گا, بڑا سخت ان کو پکڑے گا. اور جب اللہ پکڑنے پر آ جائے تو پھر اللہ کی پکڑ کو کوئی روک نہیں سکتا. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں, آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. پھر فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا, اور اگر ہم بناتے اس قرآن کو عجمیًا غیر عربی, وَقَالُوا, تو وہ کہتے, لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ, کہ اس کی آیات کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں, عجمیٌ وعربی, کیا عجمی کتاب اور عربی رسول. تو اصل بات کیا تھی کہ اہل مکہ کا ایک اور اعتراض بھی تھا, اور وہ اعتراض کیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی ہیں, عربی ان کی مادری زبان ہے, اور قرآن کو انہوں نے عربی میں ہی پیش کر دیا, تو یہ انہوں نے اصل میں خود ہی گھڑ لیا ہے. ہم تب مانتے, अगर कुरान किसी और जबान में जो है वो ये लाते और पेश करते, कोई भी और जबान होती, मसलन जो है वो इब्रानी या फारसी या जो है वो जर्मनी जबान या कोई भी और जबान, तो आप कोई भी दूसरी जबान समझ लें। तो अब यहाँ पे क्या है, असल में यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि आजमियन, और आजमियन जो है इसके मानी क्या होते हैं, अजम। अरब के लोग जो थे खुद तो अरब वाले थे, तो ऐन जीम मीम अजम जो है इसके मानी क्या है, कि ऐसी बात जिसमें इबहाम हो, जिसमें इख्फा हो, और वो बात जो के समझ में ही ना आए। तो अहले अरब जो थे वो ये कहते थे, जैसे अहले अरब जो है अपने अलावा सबको अजमी कहते हैं। अजमी का फिर मतलब क्या है, आजमी उन, अजमी ओपरी जबान वाला, आजम उसको कहते हैं जिसकी जबान में ओपरापन हो। और मसलन जितने भी लोग अरबी सीख भी लें, लेकिन वो असली अरबी नहीं है ना, अजमी है। जबान की जो एक फसाहत, बलागत, लुगत, आप देखें कि अभी यहां पर जो है वो इमिग्रेशन के लिए किसी को लेटर चाहिए था रिश्तेदारों में से, तो उन्होंने कहा कि लेटर लिख दें, तो उस किसी ने उनको लेटर लिखा, तो लेटर लिखा तो जिनको लेटर दिया गया उनको चाहिए था कि घर वाले कोई उनको लेटर लिखें कि हाँ यही इनका एड्रेस है ना। अब लेटर गया तो घर जो घर वाले थे वो लेटर पढ़कर हंस रहे थे, क्योंकि यहाँ की जनरेशन है ना, कहने लगे कि इंग्लिश पर हंस रहे थे हम, इसलिए हंस रहे थे कि इंग्लिश कैसी है। तो मैं दिल में सोचने लगी इसमें शुक्र नहीं किया कि लेटर मिल गया है, और इसलिए हंस रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो कैसी है। तो बात क्या होती है कि यहाँ के बच्चे आप जो इंग्लिश बोलते हैं वो कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि वो यहाँ के जो बॉर्न बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं वो और इंग्लिश है, हत्ता कि वो ऐसी किताबें पढ़ने से इनकार कर देते हैं, खा वो बहुत ही अच्छी किताबें हों कि जिनकी हमारी पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी इंग्लिश है, यानी सही इंग्लिश नहीं है जो इनकी है, तो कहते हैं हमारी तो समझ में नहीं आती, ऊपर से हटा दें, गुजर जाती है ऊपर से। तो बहरहाल तो अजमी जो है उसको कहते हैं जिसकी बात समझ में ना आए, तो जो ओपरी जबान में बात करे उसके लिए ये लफ्ज जो है इस्तेमाल होता है। तो अब जो है वो ये कहते थे कि कुरान जो है ये गैर अरबी में क्यों नहीं नाजिल हुआ, अगर ये कुरान जो है गैर अरबी में नाजिल होता, रसूल इसको गैर अरबी में किसी और जबान में पेश करते तब हम मानते, क्योंकि अरबी तो इनकी अपनी जबान है, तो इन्होंने खुद ही इसको घड़ लिया है। अल्लाह ताला इनके इस एतराज का जवाब दे रहे हैं कि अगर हम कुरान को, जो इनका जोश है कि गैर अरबी में हो, अगर हम इसको जो है वो गैर अरबी में नाजिल कर देते, वलौ जअलनाहु कुरानन अजमियन, गैर अरबी में नाजिल करते, लकालू तो ये कहते लौला फुसिलत आयातुहु, कि इसकी आयात जो है वो खोलकर क्यों नहीं बयान की गई। फिर ये क्या करते, फिर जो है ये मजाक उड़ाते और कहते कि क्यों नहीं इसकी आयात जो है ये वाजे क्यों नहीं है, मुफस्सल क्यों नहीं है, और अलग अलग जो है वो बयान क्यों नहीं है, तफसील वार बयान क्यों नहीं की गई। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो हैं ये बात बता रहे हैं कि कुछ लोगों का काम होता है इतराज करना, तो इतराज बराए इतराज, और ये इनका बेतुका इतराज है कि जो है वो हमें कुरान जो है किसी और जबान में मिलना चाहिए था। इसको यूं ही समझे, जबाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, जो मेरा यार है ना उसकी जबान है तुर्की और तुर्की मुझे आती नहीं है, है ना, तो फिर ऐसे दोस्ती कैसे हो सकती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इसका ये जवाब दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि आजमीन व अरबी, कि क्या किताब हो अजमी यानी गैर अरबी किताब हो और साथ हो उसके अरबी रसूल, तो अरबी की सिर्फ जो है ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई है कि अगर हम इसको अजमी कुरान बनाकर भेज देते फिर ये लोग जो थे इतराज करते, क्या इतराज करते, आजमीन व अरबी, कि ये जो है अजमी कुरान को जब अल्लाह ने भेजा तो फिर जो है वो मुखातिब अरबी क्यों कर दिए। बाद लोग कहते हैं कि अरबी से मुराद के जिनको कुरान भेजा गया, जिनको किताब भेजी गई वो अरबी, बाद कहते हैं कि रसूल जो भेजा गया वो अरबी, मुराद क्या कि किसी और जबान में किताब है और जो लेकर आया है उसकी अपनी जब जबान नहीं है तो वो उसका उस तरह हक नहीं अदा कर सकता ना, और जिस कौम को दिया जाए वो भी उसका उस तरह हक नहीं अदा कर सकती। पता चला आपको इस बात का, आप इसका तर्जुमा कैसे करेंगी कि क्या अजमी किताब और अरबी रसूल, या यूं कि क्या अजीब बात है कि कलाम किताब अजमी है और मुखातिब अरबी। समझ आ गई? क्योंकि लाने वाला भी हो सकता है, जिसको लाकर पेश जिसके सामने किया गया वो भी मुराद जो है वो हो सकता है। तो अहले मक्का फिर ये एतराज कर सकते थे कि ये भी खूब मामला है कि अरब कौम में एक अरब को रसूल बनाकर भेजना चाहिए था, गैर अरब को क्यों बनाकर भेज दिया गया, है ना? जैसे अब जो है ये अफगानिस्तान में या अमेरिका में या जो है ये इराक में, तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अरबों को हायर कर रहे हैं ताकि अरबों से वो काम लें जो वो खुद चाहते हैं, और उसकी डबल तनख्वाह से भी ज्यादा तनख्वाह, क्योंकि वो ज्यादा समझते हैं ना, तो अंदर से उनको भेदी भी मिले और लैंग्वेज और सब चीजें भी ना। जैसे आप यूं समझ लें कि अगर यहाँ की किसी यहाँ की फौज में, बाहर की ममालिक की फौज में जो है वो लोगों को ले लिया जाए जो कि उस मुल्क के हैं, फिर उनको इमिग्रेशन लेकर आए, फिर यहाँ हो गए, फिर वो फौज में आए, फिर अपने मिशन के लिए उनको वहां पे रवाना किया जाए अपने बनाकर, तो बहरहाल इनकी फिर तनख्वाह जो है वो ज्यादा होती है। पिछले दिनों भी कोई बता रहा था कि उसके बेटे को मुंतखब करके जो है वो इराक भेजा गया, लेकिन वो साल बाद आ तो गया, लेकिन अब वो गिल्टी बहुत फील करता है कि मैंने क्या किया। तो बहरहाल अब बात क्या है, कुल हुआ लिल्लज़ीन आमनू हुदन व शिफा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बात कह दीजिए कि हुआ वो लिल्लज़ीन, इन लोगों के लिए है, आमनू जो ईमान लाए हैं, हुदन व शिफा, हदायत है और शिफा है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप कुरान पर ईमान लाने वालों को बता दीजिए कि कुरान मजीद हदायत भी है और शिफा भी है, बहुत बड़ी नेमत है, लोग इसकी कदर करें, इसकी नकदरी ना करें, इसकी हदायत की तलब करें, इसके प्यासे बन जाएं। ये तो उम्मुल किताब है, ये तो उम्मुल हुदा है, ये तो शिफाउल अमराज है, नफसानी भी और रूहानी भी, हर तरह की बीमारियों का इसके अंदर जो है वो इलाज है। वल्लज़ीना ला युमिनूना, और वो लोग जो ईमान नहीं लाते, फी आज़ानिहिम वक्रुन, उनके कानों में वक्र है। वक्र का माने क्या है, बोझ गिरानी, तो उनके कानों में एक डांट है। जैसे कान के अंदर नहीं कुछ रख दिया जाए तो फिर सुनाई नहीं देता, आपने जहाज का सफर किया है ना, सब तभी तो पहुंचे यहाँ पे, तो इल्ला ये कि कोई यहाँ का हो, तो जहाज जब उतरने या चढ़ने के करीब होता है तो मुझे नहीं पता, बाज एयरलाइन ऐसी होती है कि वो देती है कान में कुछ डालने के लिए, उस वक्त उसकी आवाज जो है वो बहुत तेज होती है, और बाज लोग वो आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते और कानों की समात पे असर भी पड़ता है, तो बाज एयरलाइन वो देती हैं फिर ले भी लेती हैं आपसे, क्योंकि बाज लोग ऐसे भी होते हैं वो डाल के पॉकेट में ले आते हैं कि ये भी कोई नई चीज है और नई मतलब अच्छी चीज है, तो गलत चीज है ना कि जो मांगी दी जाए तो वापस उन्होंने लेनी होती है, तो आवाज ना ज्यादा आए, तो अगर वो चीज कान में डालें तो फिर आवाज नहीं आती, बहुत कम आती है। तो इनके कानों में एक वक्र है, बोझ है, और आप पढ़ी चुकी कि ये लफ्जन वो बोझ जो हिस्सी तौर पर महसूस किया जाए, वो बोझ जो मादी तौर पर महसूस किया जाए, दोनों तरह है, तो गोया के इनके कानों के अंदर एक बहरापन है, गिरानी है। वह अलैहिम अमन, और इन पर जो है वो क्या है कि फिर इनके हक में अंधापन है, कोरापन है, जैसे किसी का दिल ही कोरा हो जाए, तो अमन भी यहां पे मसदर है। मानी फिर क्या है कि अगर कोई शख्स बहरा हो और उसके आंखों पर हो पट्टी, फिर उसका हाल क्या होता है, उलाइका युनादून मिन मकानिन बईद, कि यही वो लोग हैं कि पुकारे जाते हैं जगह से दूर की, उनका हाल फिर ऐसा हो जाता है जैसे इनको कोई दूर से जो है पुकारता हो। अब यहाँ पे ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि बेनजीर तशबीह है जो अल्लाह ताला ने दिया है कि हट धर्म मुतकब्बिर मुलहिद जो लोग हैं उनका हाल क्या है, आप उन्हें कुछ दलाइल दे दें, आप कितने अच्छे तरीके से उनको बात समझा दें, लेकिन जो उनके अंदर तासुब पाया जाता है तो वो क्या करते हैं कि माकूल बात को माकूल दलाइल से समझने के लिए तैयार ही नहीं होते, उनके अंदर अनानियत होती है, बुग्ध और अनाद होता है, तो ऐसे लगता है आपने जो उनसे तकरीर की है, जो बात की है, तो ऐसे ही जैसे आपकी आवाज उनके कान के पर्दों से टकरा कर वापिस आ रही है, उनके दिल और दिमाग के दरवाजों तक नहीं पहुंचती, वो पत्थर हैं, पत्थर से जैसे बारिश बरसती है पत्थर पर, तो फिसल कर नीचे गिर जाती है, जमीन के अंदर बारिश जाती है ना, तो कुरान की आयात भी ऐसे लोगों के लिए कोई असर नहीं करती, कोई इनको फायदा नहीं देती, क्योंकि इन्होंने अपने आप को अंधेरे का खूगर कर लिया है, इन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया है। ये बहरे हैं, सारी बातें सुनते हैं, लेकिन हदायत की बात इनके कानों से टकरा कर वापिस आ जा सकती है, वापिस आ जाती है। आप दुनिया में बाज औकात हो सकता है कभी आपको किसी ऐसे से मिलने का इत्तफाक हो कि दुनिया के अंदर मस्त है, हराम में मसरूफ है, बुराइयां वो करता है और नमाज वो पढ़ता नहीं, हकूक वो अदा नहीं करता, बजाहिर वो सोसाइटी में बड़ा कामयाब लगता है, आप अच्छे से अच्छे तरीके से चाहते हैं कि उस तक हक बात पहुंच जाए, लेकिन ऐसे लगता है कि बात जो है उतरती नहीं हलक से नीचे, उसके उसके करीब जाती ही नहीं, बस पहले से टकरा कर वापस आ जाती है, और वैसे वो आना भी नहीं चाहता ऐसी जगह पर या ऐसी महफिल या ऐसी मस्जिदों में। तो ऐसे शख्स की यहाँ पे तस्वीर खींची गई है कि ये लोग मानना नहीं चाहते जो अहले मक्का हैं, दूर से जैसे खड़ा हुआ किसी को कोई आवाज दे रहा हो, बस यही हाल है, क्योंकि कानों के अंदर जब बोझ होता है ना, कान में जंग लग जाए किसी के, या मैल आ जाए कान में, दिल को जंग और कानों में मैल जब आ जाए तो क्या होता है कि कितना आप बोलें तो लगता है दूर से कोई बुला रहा है। आप बाज़ औक़ात बच्चे को देखें, टीवी देख रहा है, इंटरनेट पर चैटिंग कर रहा है बैठा, आप बोल रहे हैं, फोन बज रहा है, बेल हो रही है, आप बोल रहे हैं, ऐसे लगता है सुनते ही नहीं, या वो किताब पढ़ रहे हैं। बाज़ यहाँ के किताबों में भी एक नशा है ना, वो अपने मिशन पे जब वो लोग तैयार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, किताबें ज्यादा पढ़नी चाहिए, आप चीखते रह जाए, बच्चे पढ़ने में मसरूफ है, बोलेंगे नहीं, कहेंगे सुना ही नहीं हमने आपने क्या कहा था। तो खैर, वलकद आतैना मूसल किताबा, और तहकीक हमने दी किताब मूसा अलैहिस्सलाम को, फख्तलिफा फी, तो इख्तलाफ किया गया इसमें, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और जलीलुल कदर पैगंबर भी गुजरे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, कौम को कैसे कैसे समझाया, कैसी बेहतरीन किताब उनको दी थी मैंने तौरात, लेकिन कौम ने उनसे इख्तलाफ किया, उसको मान कर ना दिया, तो यही इख्तलाफ कौम ने किया था कि मानना नहीं है। वलौला कलिमतुन सबकत, और अगर होती ना एक बात सबकत जो पहले से तय हो गई थी, जो गुजर चुकी, मैं रब्बी का तेरे रब की तरफ से, लको दिया बैनहुम, तो इनके दरमियान फैसला ही कर दिया जाता, तो अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले से ही तय न कर दी गई होती तो इनके दरमियान फैसला ही कर दिया जाता। तो ये जो है ना एक सख्त धमकी है, ये अहले मक्का के जो मुतालबात थे, और ये के कभी रसूल का इनकार, कभी कुरान का इनकार, तो और वो जो जुल्म कर रहे थे, तो यहाँ पे धमकी दी जा रही है अजाब की, लकुदी या बेनहुम, तो फैसला ही कर दिया जाता दरमियान इनके। तो वो कौन सी बात है जो अल्लाह के पास पहले से सबकत हो चुकी है कि क़यामत कब आएगी, किसी के लिए एक मोहलत जो एक कौम के लिए मुकर्रर कर दी गई है, तो ये वो बात है कि अल्लाह ताला ने जो है वो हर कौम के लिए जो है वो एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है कि कितना वक्त है जब लोग जो है वो सीखेंगे और पैगंबर उनको सिखाएगा, और अगर फिर भी वो इनकार करेंगे तो फिर अल्लाह ताला उनको जो है वो सजा दे देगा। तो वो वक्त आने से पहले जब तक कि कौम की मोहलत खत्म ना हो जाए, अल्लाह उनको जो है वो सजा नहीं देता, अजाब नहीं भेजता, ये उसी बात की तरफ इशारा है। वइन्नहुम लफी शक मिन्हु मुरीब, और हकीकत ये है कि ये लोग उसकी तरफ से सख्त शक में पड़े हुए हैं, शक, अब शक भी है और मुरीब भी है, तो आप देख लीजिए कि यहां पर भी अल्लाह ताला ने जो है वो दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, एक है शक का और दूसरा है रेब का। तो अब शक के लिए आपको याद है कि कोई और लफ्ज भी जो आपको आता हो, मरी है ना, शाबाश, ये भी आपने सही बात बताई, क्योंकि शक के लिए जो है ये एक ही लफ्ज नहीं है बल्कि इसके अलावा और लफ्ज भी हमें कुरान में मिलते हैं। तो जब दो लफ्ज इकट्ठे आ जाएं, फिर इसके मानी क्या है, कुरान में छह लफ्ज आए हैं और पहला दर्जा है शक का और आखिरी दर्जा है रैब का है, और शक कहते हैं कि दो जो नजरिए हैं उनका बराबर होना, जबकि किसी एक को तरजीह देने के लिए कोई दलील ना हो, दो चीजें हैं, ठीक है, मसलन आपको लग रहा है कि दो रास्ते हैं जिसपे आप घर पहुंच सकती हैं, आपके पास ना कोई दलील नहीं है जिसमें से एक रास्ते को आप तरजीह दे सकें और आप जल्दी घर पहुंच जाएंगी, कि आपको वाकई प्रूफ हो कि हाँ ये जल्दी मुझे पहुंचा देगा, दो रास्ते हैं, तो शक पड़ गया आपको, तो ये है पहला दर्जा। और फिर शुबा, मरीज, मिरिया, लबस, पांच, बीच में चार को छोड़ के आखिरी पे आ जाते हैं, रैब। अब रैब क्या है? ऐसा शक जिसमें इस्तराब और खलजान पाया जाता हो, है ना? ऐसा शक कि जो दिल में इस्तराब पैदा कर दे और फिर जो है इंसान उस काम को जो है वो क्या करता है, करता नहीं है। शक की वजह से आप एक काम नहीं करती, और जब उसके अंदर रेब की कैफियत हो तो फिर आप देख लेंगे खटका। तो अहले मक्का जो थे वो क्या थे? कयामत का शक, किताब का शक, रसूल का शक कि रसूल सच्चा रसूल नहीं है, किताब सच्ची किताब नहीं है, कयामत आनी कोई नहीं है, और खुद ही उन्होंने अपना अकीदा बना लिया था। तो हकीकत यह है कि ये लोग उसकी तरफ से सख्त इस्तराब अंगेज शक में पड़े हुए हैं। मन अमिला सालेहन, जो अमल करे सवाले, फले नफ से ही अपने ही लिए करेगा। तो जो अच्छे अमल करे उसको अपना खुद उसको फायदा होगा। वमन असा, और जो करे बुरा, फअलैहा, तो उसका वबाल उसी पर होगा। वमा रब्बू का बेजुल्लामिल अबीद, बेशक तेरा रब जो है वो अपने बंदों के लिए जुल्म करने वाला नहीं है। तो ये जो आखिरी आयत है ना, ये पारा नंबर 24 की आखिरी आयत, तो इससे क्या बात पता चलती है? अल्लाह ताला जो है मुखालफीन से बेपरवाही का ऐलान कर रहे हैं कि मैं बेनियाज हूं, किसी की नेकी से भी मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला और किसी की बदी से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। अगर रसूल का कोई साथ देगा, कुरान की दावत को कबूल कर लेगा, तो उसका अपना ही फायदा है, और अगर वो इनकार करेगा तो मुझे जो है कोई नुकसान नहीं है, उसका अपना ही नुकसान है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बिजल्ला मिलिल अभी जो है मुबालगे के तौर पर आया है, और जब मुबालगे में नफी हो, मुबालगे में नफी हो, तो मकसूद क्या होता है? मुबालगा फिन नफी। इसका मतलब यह है कि तेरा रब बंदों पर जरा भी जुल्म करने वाला नहीं है, मामूली सा भी जुल्म करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह बंदों पर जुल्म करेगा, जो अच्छा करेगा तो उनके लिए गफूर रहीम है, जो बुरा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए जो है वो जू इकाबिन अलीम है। तो लोगों को चाहिए कि अपने रवैयों को बदलें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।